एक तरफ शिवानी का एक्सीडेंट हो चुका था तो वहीं दूसरी तरफ चाहत की मां निशा की हालत भी अब काफी हद तक बिगड़ चुकी थी। श्रद्धा और पार्वती जी निशा को लेके हॉस्पिटल आई और उन्हें वहां एडमिट करवा दिया। निशा के कुछ टेस्ट करवाए जा रहे थे, उसकी हालत देखकर डॉक्टर पहले ही समझ गए थे कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और उन्होंने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन ले लिया था। बाहर वेटिंग एरिया में पार्वती जी और श्रद्धा चाहत के आने का वेट कर रहे थे। श्रद्धा ने चाहत को कॉल करके हॉस्पिटल आने का कह दिया था। वहीं चाहत भी हॉस्पिटल का नाम सुनकर समझ गई थी कि जरूर निशा की हालत फिर से खराब हो गई है। चाहत रोते हुए हॉस्पिटल पहुंची और आते ही श्रद्धा के गले लग गई। वो रोते हुए बोली, सब मेरी गलती है, मुझे बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, मैं मम्मा का ख्याल नहीं रख पाई। उन्होंने मेरे लिए उस इंसान को छोड़ा जिन्होंने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। चाहत को आज अपनी लाचारी पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ना तो उसने ठीक से पढ़ाई की और ना ही ठीक से कोई नौकरी कर पाई। जॉब के टाइम भी इतना मन लगाकर मेहनत करने के बावजूद वो कोई ना कोई गलती कर देती थी। श्रद्धा ने उसे सहलाते हुए कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, आंटी ठीक हो जाएगी। अरे एक छोटा सा चक्कर ही तो आया है, मैं घबरा गई थी इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले आई। बोलते हुए श्रद्धा चाहत से अलग हो गई। उसने निशा की पूरी हेल्थ कंडीशन के बारे में उसे नहीं बताया था। वो जानती थी कि अगर उसने सब बता दिया तो चाहत हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच पाएगी और वहीं पर रोने बैठ जाएगी। चाहत ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी नानी के पास गई। चाहत पार्वती जी के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर कहा, डोंट वरी नानी, सब ठीक हो जाएगा, मम्मा ठीक हो जाएगी, डॉक्टर हर बार अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट करते हैं। पार्वती जी ने उसकी बात पर हामी भरी, उनकी आंखों में भी आंसू थे। आज उन्हें चाहत की हालत देखकर दया आ रही थी। निशा तो पहले से ही बीमार थी, ऊपर से वो भी उस पर बोझ बन गई थी। उन्होंने एक नज़र चाहत के चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं और चेहरा भी मुरझा गया था। पार्वती जी ने चाहत की तरफ देखकर धीरे से कहा, तेली मम्मा की तबीयत ठीक होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, सुना है शहर में बहुत सारे वृद्धाश्रम होते हैं। नानी आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे होते हुए आप वृद्धाश्रम में क्यों रहोगे, मैंने आपको कहा ना टेंशन की कोई बात नहीं है और सब ठीक हो जाएगा, चाहत ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। श्रद्धा भी उनके पास आकर बैठ गई। उसने नानी को तसल्ली देते हुए कहा, चाहत बिल्कुल ठीक कह रही है नानी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात और बता दूं, इस हॉस्पिटल में मेरे पापा की जान पहचान है, अब हम निशा आंटी को यहाँ से ठीक करके ही लेकर जाएंगे। श्रद्धा और चाहत की हिम्मत देखकर पार्वती के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे। वो तीनों वहां बैठकर डॉक्टर का वेट कर रही थी ताकि रिपोर्ट का पता चल सके। तीनों एक दूसरे के सामने हिम्मत दिखाने की कोशिश जरूर कर रही थीं, पर दिल ही दिल में पार्वती जी, निशा और श्रद्धा तीनों ही परेशान थीं। पार्वती जी की परेशानी का कारण निशा और चाहत पर बोझ बना था, तो वहीं निशा की तबीयत को लेकर चाहत परेशान हो रही थी। ऊपर से उसे कोई जॉब भी नहीं मिली थी। श्रद्धा की परेशानी उनसे अलग थी। उसने चाहत से झूठ बोला था कि निशा को हल्का सा चक्कर आया है। निशा की खराब हालत उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी और जिस हिसाब से डॉक्टर ने उसे आते ही अंडर ऑब्जर्वेशन लिया था उससे साफ था कि निशा को कोई गंभीर बीमारी है। दूसरी तरफ शिवानी जैसे स्पा से बाहर निकली, दामिनी के गुंडे ने उसका एक्सीडेंट कर दिया और एक्सीडेंट करते ही तुरंत वहां से चला गया। उसने निशा को मारने की खबर दामिनी और विजय को भी दे दी थी। विजय ने शिवानी के मरने की खबर सुनी तो उसके चेहरे पर 1% भी अफसोस का भाव नहीं था, उल्टा वो बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। विजय ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और दामिनी के गले लगकर कहा, सॉरी डार्लिंग, अब कुछ दिनों तक मिल नहीं पाऊंगा, अपनी पत्नी के जाने के बाद मैं खुलेआम पार्टी में नहीं घूम सकता, आफ्टरऑल उसके मरने का इतना गम जो है मुझे, मेरी तुमसे पूरी सांत्वना है। बोलते हुए दामिनी जोर से खिलखिला उठी। वो दोनों हंस रहे थे क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। विजय अब ज्यादा देर तक दामिनी के पास रुक नहीं सकता था, इसलिए उसे बाय बोलने के बाद वो तुरंत ऑफिस चला गया ताकि आहान को उस पर शक न हो। एक्सीडेंट के बाद शिवानी अभी भी रोड पर गिरी हुई थी। लगभग 5 मिनट बाद झाड़ियों से एक आदमी निकल कर आया। उसने अपने कान पर हाथ लगाकर धीरे से कहा, आपका शक बिल्कुल ठीक था सर, उन्होंने मैम का एक्सीडेंट कर दिया है, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं, आप भी जल्दी से आ जाइए, उस आदमी ने कॉल पर कहा और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके शिवानी को अपनी गोद में उठाया। वो आदमी शिवानी को लेकर तेज कदमों से चलते हुए अपनी गाड़ी के पास लेकर गया। उसे लिटाने के बाद वो पास ही के हॉस्पिटल में चला गया था। वहीं उस आदमी से बात करने के बाद आहान की आंखें गुस्से से चल रही थीं। वो आदमी उसी ने शिवानी के पीछे लगाया था। उसे विजय और दामिनी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो शिवानी की सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। विजय और दामिनी की बात सुनने के बाद आहान ने अपने हेड बॉडीगार्ड को शिवानी के पीछे भेजा था। उसे पता था कि एक्सीडेंट होने या कुछ भी गलत होने की सिचुएशन में कैसे बचाव करना है, इसीलिए वो पहले किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने के बजाय पास के एक छोटे हॉस्पिटल चला गया था और आहान को तुरंत उसकी लोकेशन भेज दी थी। वहीं शिवानी के एक्सीडेंट का सुनकर आहान गाड़ी में था। उसने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाए और स्टेयरिंग पर जोर से पंच मारा। विजय ओबेरॉय, अगर मेरी मॉम को कुछ हो गया तो तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तेरी रूह भी मौत के लिए तड़पेगी। मुझे अच्छे से पता है तुझे तकलीफ देने के लिए मुझे किस हद तक जाना है। तुम दोनों ने जो किया है उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। आहान ओबेरॉय पर वार करते तो वो हंसकर झेल लेता, पर बात मेरी मॉम की है। ना तो मैंने पहले उन्हें लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज किया था और ना ही अब करने वाला हूँ, आहान ने गुस्से में कहा। उसने तुरंत एक आदमी को कॉल कर दिया और सर्द आवाज में कहा, एक औरत की फोटो और डिटेल्स भेज रहा हूँ, अगले 2 घंटे में मुझे वो औरत मेरे पास चाहिए। 2 घंटे काफी कम है, मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। सामने से एक आदमी की आवाज आई, वो एक एक्ट्रेस है, सांस भी लेगी तो उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेगी। फोटो और नाम भेज देता हूँ, ढूंढकर जल्द से जल्द उसे पकड़ कर लाओ, कहकर आहान ने कॉल कट कर दिया और तुरंत उस आदमी को दामिनी का नाम और बाकी डिटेल्स भेज दी। दामिनी एक पब्लिक फिगर थी, ऐसे में उसका किडनैप होना या उसके साथ कुछ गलत होना मीडिया और पुलिस में काफी हाइप कर सकता था। उसकी परवाह किए बिना आहान ने अपने आदमियों को दामिनी को किडनैप करने को कह दिया था। वैसे भी उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अच्छे से पता था कि उसने जिस आदमी को इस काम का कहा है वो पहले भी उसके लिए इस तरह का काम कर चुका है। आहान ने पहले जिस लड़की को किडनैप करवाया था वो हैसियत में दामिनी से काफी बड़ी थी, लेकिन आज तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया था। उस आदमी को काम सौंपने के बाद आहान डायरेक्ट शिवानी के पास हॉस्पिटल में चला गया। रास्ते में उसने तनु को भी वहां आने के लिए इन्फॉर्म कर दिया था। वो जानता था कि इस वक्त वो गुस्से में है। चाहत को वो गुस्सा शांत करने के लिए अपने पास नहीं बुला सकता था और ना ही इस वक्त वो उसके गुस्से के ज्वालामुखी को शांत कर सकती थी। ऐसे में तनु ही उसकी हेल्प कर सकती थी। आहान और चाहत दोनों एक साथ हॉस्पिटल में आए थे, दोनों की ही मॉम की जान पर बनाई थी।